करते हैं।
हाँ जी,
नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवछायाड़म, नमो लोए सफसाहूड़म, मंगलम खानवीरो मंगलम गौतमो कणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः योग संहारी के। छह डाला की तीसरी डाल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और सात तत्वों में हम संवर तत्व तक डिस्कशन लगभग पूरा कर चुके हैं। शम दम कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन, इस तक डिस्कशन हो चुका है। अभी तक किसी को कोई डाउट है?
नहीं
हेलो,
नहीं
ओके, ठीक है। संवर तक की बात इतनी आई थी कि जो हम आश्रव में उल्टा कर रहे थे, मतलब जो राग द्वेष आदि प्रगट में दुख कारण है, दुख के कारण है, हम उनको ही करने में अपना क्या बोलते हैं, जीवन सार्थक मानते थे, तो अब उसको रोकने का प्रयत्न हम संवर में करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आश्रव है और बंध है। तो आश्रव यानी राग द्वेष परिणाम और बंध यानी उन्हीं में विशेषता, मतलब अलग पर्याय नहीं है, बंध वही है। और संवर मतलब अपने उपयोग को प्रथम भूमिका में कैसे भी करके आश्रव बंध से हटाना। तो उसके लिए हम अलग अलग प्रयास करते हैं कि हम इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे, हम नियम लेंगे। हम पहले तो बहुत अशुभ भावों से शुभ भावों पर आएंगे और फिर उसमें भी हम भेद ज्ञान के द्वारा विकल्पों को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें दो तरीके का संयम होता है, आप लोगों को पता होगा। संयम पता है आपको कितने टाइप का होता है? हेलो,
प्राणी संयम इंद्रिय, हाँ प्राणी संयम
हेलो,
इंद्रिय, हाँ
आप लोग को मेरी आवाज
हाँ
आ रही
सुनाई
रहे,
देती है
नहीं?
हमारी आवाज आपको नहीं सुनाई देती? अनुभव जी, हमको सुनाई देती है आपकी आवाज?
ओके, हाँ। सो संयम हम लोग जो ब्रॉडली पढ़ते हैं तो उसके दो प्रकार हम करते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। आप लोगों ने सुना है दो प्रकार का संयम?
हाँ जी, हाँ
नहीं, मेरे को नहीं पता है।
ओके, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। संयम मतलब अपने आप को एक यू नो यू यू कम इन ए डिसिप्लिन, आप अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आते हो, उसको संयम बोलते हैं। मतलब मन वचन और काया की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना, उसको संयम। हम बहुत जनरल वे में बोले तो ये दो तरीके से होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। प्राणी मतलब ये जो जीव है, कितने टाइप के जीव है? छह काय के जीव होते हैं। एक इंद्रिय के होते हैं पांच प्रकार, जल अग्नि वायु वनस्पति और पृथ्वी। ये पांच प्रकार के जीव तो हो गए एक इंद्रिय, पांच प्रकार की बहुत बड़ी जातियां हैं, राइट? मतलब पानी और अग्नि में कोई रिलेशन नहीं दिखता, बट दोनों एक ही जाति के जीव है, राइट? तो एकदम वेरिएशन बहुत सारा है कि पानी भी जीव है और अग्नि भी जीव है। तो हम पांच को पांच अलग अलग काय बोलते हैं, ठीक है? पांच अलग ही जाति के शरीर है। पृथ्वी अलग जाति की शरीर है, हवा एकदम ही अलग जाति का शरीर है। तो ये पांच काय और एक त्रस जीवों का, तो उन सब में सिमिलैरिटी ये है कि मैं दो इंद्रिय जीव को देखता हूं तो भी पता पड़ जाता है कि जीव है, और पंचेंद्रिय जीव को देखता हूं तो भी पता पड़ जाता है कि जीव है, इनमें कंफ्यूजन नहीं रहता। लेकिन एक इंद्रिय के पांचों को देखता हूं तो पता नहीं पड़ता कि ये जीव है कि ये जीव नहीं है, करेक्ट?
बराबर, हाँ
हेलो, बराबर। इसलिए हम जब दिनागम में काया शरीर के हिसाब से जीवों का वर्णन किया गया तो उन्होंने बोला छह काय के जीव होते हैं, पांच एक इंद्रिय के स्थावर, उनके शरीर एकदम अलग अलग है, और उनको बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि अच्छा पानी एक जीव है। नहीं बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि पानी जीव भी हो सकता है, राइट?
बराबर।
इसलिए जीवों के जब काय की अपेक्षा भेद की तो छह की है, पांच स्थावर को पांच अलग अलग कैटेगरीज थी और बाकी सारे त्रस जीवों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया। तो पांच स्थावर और एक त्रस, ये छह मिलाकर छह काय के जीव बने, ठीक है? तो इनको या तो हम प्राणी बोलते हैं या फिर हम जैसा नॉर्मल भेद करते हैं, जीवों के कितने भेद होते हैं, तो एक इंद्रिय, इसमें भी जो एक इंद्रिय जीव है वह कैसा होगा, सूक्ष्म होगा और बादर होगा, राइट? इसके दो भेद बनते हैं। फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगी और असंगी, ठीक है? तो कितने हुए, एक इंद्रिय सूक्ष्म, एक इंद्रिय पातर, फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय संगी, पंच इंद्रिय असंगी, ये टोटल सात हुए, ठीक है? एक इंद्रिय के दो भेद, टू प्लस दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये पांच हो गए, एंड देन संगी पंच इंद्रिय छह एंड असंगी पंच इंद्रिय सात, टोटल सात हो गए, राइट? इन सबके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो भेद, तो टोटल ये 14 हो जाएंगे, 14। ये 14 जीव समास कहलाते हैं, ठीक है? ठीक है, ये सब कहलाएंगे प्राणी। तो नाउ
ડ્રોપ ઓફ કરવું પડશે મને અને હું ફરી જોઈન થઉં છું. हेलो
हाँ
जी ओके हूँ से अनुभव जी आवी गया छे मर्ज करो फोन हेलो अनुभव जी
हाँ जी
ओके हाँ संभाई छे ने कानो बेन
प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाना छह काय की या 14 जीव समा के किसी भी प्राणी को मन वचन काय से किसी भी तरीके से ऐसे प्रयत्न में रहना अपनी अपने आप को ऐसे नियंत्रित करना संयमित करना इस डिसिप्लिन में रहना कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो इसको बोलते हैं प्राणी संयम
हाँ
ठीक है
पहले आपको सुनाई देता था अनुपम जी हम बोलते थे तो आपको सुनाई देता था
हाँ 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 थोड़ी सी आवाज कम है लेकिन सुनाई दे रहा है
नहीं नहीं पहले पहले जब अपने आप से आप आए थे तभी आई फेल्ट के आपको सुनाई नहीं देता था हमारी आवाज
हाँ थोड़ा कम दे रहा था अभी ठीक है अभी दे रहा है हाँ तो प्राणी संयम ये पहले प्रकार का संयम है इसमें क्या होगा हम प्रयत्न पूर्वक यत्न बुद्धि पूर्वक ये प्रयत्न करेंगे कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं हो ये प्राणी संयम है तो हमारी भूमिका में तो स्थावर जीवों की तो हिंसा हम बहुत ज्यादा नहीं बचा पाते तो हम पानी छान कर पीते हैं जब तक काम नहीं हो तब तक अग्नि नहीं जलाते हवा को भी ज्यादा परेशान नहीं करते राइट और अकेली वही वनस्पति खाते हैं जो कि साधारण नहीं हो प्रत्येक हो ये हमारे अलग अलग यत्न है कि हम प्राणी संयम को पाने और त्रस जीवों की तो हम बुद्धि पूर्वक ही बहुत यत्नाचार से रक्षा करते हैं राइट ये प्राणी संयम बेसिक पहला होना चाहिए मुनिराजों के तो स्थावर जीव की हिंसा का भी त्याग हो जाता है हमारे अभी त्रस जीवों की हिंसा का भी त्याग नहीं है लेकिन हमको उसके त्याग का यत्न लेना चाहिए अभी तो हम अवृत्ति हैं, तो हमारे तो एक देश त्याग भी उसका नहीं है राइट लेकिन फिर भी हमारी जीवन शैली ऐसी है हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि उसमें ऑटोमेटिकली बहुत सारे प्राणियों की हिंसा तो बंद हो जाती है ठीक है क्योंकि सबसे ज्यादा मेन हिंसा जो लोक में अभी चलती है वो एक भोजन में चलती है राइट सबसे मेन मतलब गृहस्थता के लिए जो हिंसा है तो हम क्रम से जाएंगे उसमें तो पहला इंद्रिय होती है स्पर्शन इंद्रिय राइट स्पर्शन इंद्रिय संबंधी बहुत हिंसा चलती है आप घूम रहे हैं आप चल रहे हैं तो चलते चलते पैर के नीचे जीव आ जाते हैं हम दौड़ रहे हैं तो उसमें भी बहुत हिंसा होती है तो ये स्पर्शन इंद्रिय एक बेसिक बॉडी के द्वारा हिंसा हो गई ऐसा हमने समझा सेकेंड रसना इंद्रिय अब रसना इंद्रिय मतलब बहुत मेजर हिंसा का एक एवेन्यू है तो जिसको अपनी जेवा पर कंट्रोल नहीं है रसना पर कंट्रोल नहीं है उसका हिंसा पर कंट्रोल होना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि हम पत्थर को नहीं खा सकते राइट हेलो हेलो
हेलो सुनाई देता है
हाँ 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 तो हम पत्थर को नहीं खा सकते हम लाइक लकड़ी को नहीं खा सकते हमको खाना होगा तो हम प्रॉपर सब्जियां ही खाएंगे राइट क्योंकि ये जो बॉडी है ये भी या तो प्लांट्स पर जीती है या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे उनकी जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी को खा कर ये लोग जीते हैं राइट
बराबर
हेलो तो बिना हिंसा के तो भोजन संभव है ही नहीं इट्स नॉट पॉसिबल टू यू नो ईट एंड नॉट किल एनीवन तो हम पूरा सर्व पूरी तरीके से अहिंसक भोजन तो पॉसिबल है ही नहीं। अब दो ऑप्शन है, या तो आप जिन जीवों की इंद्रियां बहुत सारी हैं उनकी हिंसा करके अपने पेट को भरें, या फिर जिसमें हिंसा कम से कम होती हो ऐसे वनस्पति काय के जीवों की हिंसा करके पेट भरें। इसमें भी बहुत प्रयत्न करके जो पूरे फल चुके हैं, जो पूरे पक चुके हैं, जो आधे पके हुए नहीं हैं, जिनमें अभी साधारण जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, तो उसमें भी बहुत यत्न और विवेक से हम लोग वो वाली चीजों को लेकर उसका प्रयोग में लेते हैं, राइट। ये सब किसमें आएगा? प्राणी संयम में। आपका पूरी लाइफस्टाइल से प्राणियों की रक्षा करने में कितना उपयोग और कितनी तत्परता है वह प्राणी संयम है, ठीक है। श्रीमद राजन जी ने जब मुमुक्षुओं के लक्षण का वर्णन किया तो उन्होंने चार बातें बताई। पहला, कषायों की उपशांतता, पहला लक्षण है, राइट, कि जो जीव आत्मार्थी है, मुमुक्षु है, उसके सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? कषायें शांत होना चाहिए। जो हमने अभी पढ़ा संवर में, कषायों का शमन। दूसरा, मात्र मोक्ष अभिलाष, कि उसको जिंदगी में और किसी चीज की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोक्ष की अभिलाषा होनी चाहिए। मतलब वैसे तो कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए, और इच्छा होनी चाहिए तो किसकी होनी चाहिए? स्वरूप की पूर्णता कब होगी? मैं कब निज घर आऊंगा, मैं कब अपने में समा जाऊंगा, तो ऐसे में भगवान कब बनूंगा, मैं सुखी कब होऊंगा, ये वाली इच्छा उसकी होती है। तीसरी बात, भव खेद। भव खेद मतलब, हेलो,
मतलब भव होने का खेद।
हाँ, भव होने का खेद का मतलब,
मतलब अभी भव का एंड करना है ना, तो भव बढ़े तो आपके
हाँ, तो खेद, खेद का क्या मतलब हो गया यहाँ पर?
दुख।
हाँ, मतलब अंत, संसार में
अंत लाना है,
दुख दिखता है उसको, संसार को खत्म करना है। हम किसी चीज को खत्म करेंगे क्यों करेंगे? जैसे इफ आई हैव हेडेक, तो हेडेक है तो अब मुझे हेडेक का खेद होगा, या मुझे कोई बीमारी होती है तो मुझे बीमारी का खेद होता है कि ये क्यों है, मुझे नहीं होनी चाहिए थी। और जब वो खेद होता है तो उसको खत्म करने की भावना होती है, और जब उसको खत्म करने की भावना होती है तो उसको खत्म करने का प्रयत्न होता है। अब इफ आई एम कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर बीमारी, यदि मुझे उसमें ही अच्छा लग रहा है तो मुझे उसको खत्म करने की भावना ही नहीं होगी, और भावना नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं है, प्रयत्न नहीं है, और प्रयत्न ही है मतलब वो खत्म नहीं होगी। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मोक्ष की अभिलाषा कहो या भव का खेद कहो, राइट?
बराबर, या
हाँ। हमको यदि भव में खेद नहीं दिखता है तो हमारी मुमुक्षुता के सारे जितने भी हमने व्याख्यान खड़े किए, जितने भी डेफिनेशन हमने खड़ी करी है, वो सब सेंसलेस हो जाती है, क्योंकि आपको संसार में बुरा लग ही नहीं रहा है जो आप यहाँ मोक्ष आने की बातें करें, राइट। तो इसकी श्रीमद आचार्य जी ने बोला, सबसे पहले तो उसको कषाय शांत हो जानी चाहिए। तीव्र कषाय वाले को संसार और मोक्ष का कुछ फर्क ही नहीं है, वो अपनी ही कषायों की दुनिया में है, उसके अंदर एक जुनून सवार है कि नहीं मुझे तो ये करना है, तो वो यू नो आज की भाषा में उसको बोलते हैं ओवर एम्बिशियस या फिर हाईली अग्रेसिव, तो ये जो कुछ भी है, या फिर बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, बहुत ही ज्यादा यू नो पॉलिटिकल हो, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ समथिंग, प्लानिंग समथिंग, तो ये सब लोगों की कषाय बहुत तीव्र है। वो लोग इतना कुछ, उनको जिंदगी में ही प्रूव करना है कि यार मुझको बिजनेस इतना बढ़ाना है, या फिर मुझे नाम इतना करना है, या फिर मैं वहाँ उस पोजीशन पर कैसे पहुँचूँ, या फिर मैं सबसे रिच कैसे बनूँ, मेरा सोसाइटल स्टेटस कैसे बनेगा। ये सारे जितनी भी इच्छाएं हैं ये कषायों की तीव्रता में होती है। तो जिसको जीवन की सार्थकता इन्हीं चीजों में दिख रही है वो तो मुमुक्षुता को भूल जाए। ठीक है,
बराबर बराबर।
सेकंड, जिसकी कषाय शांत हुई है लेकिन उसको यहाँ सेटिस्फेक्शन बहुत है, वो हाईली सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, जिसको हम बोलते हैं संतुष्ट है, ये ठीक है, राइट। एक तो ऊपर के, एक तो होते जो हाईली एम्बिशियस लोग होते हैं, एक दूसरे होते हैं जो कि ठीक है, जो है वो ठीक है, तो वो भी मुमुक्षु है, वो नहीं, ऐसा नहीं। तो नॉट ओनली आपकी कषाय शांत होनी चाहिए, एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर दुख तो लगे कि हाँ मैं संसार में, मतलब आई एम इन द रॉन्ग प्लेस, आई डू नॉट बिलोंग हियर, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो दैट वॉज भव का खेद, और जब भव का खेद है तो मोक्ष की अभिलाषा होगी कि नहीं नहीं मुझको स्वरूप में रहना है, जहाँ मुझे अभी कितनी पराधीनता है, शरीर की पराधीनता, परिवार वालों की पराधीनता, इंद्रियों की पराधीनता, मोक्ष में कितना सुंदर रहेगा, न शरीर होगा, न संबंधी होंगे, न मोहराग्वेश होगा, सिर्फ मैं, मेरा ज्ञान और मेरा अनंत काल का जीवन। तो उसको मोक्ष की अभिलाषा रहती है, ठीक है। और सबसे आखिरी में उन्होंने लिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इन सबका पैरामीटर है, मतलब हम एक ये मान सकते हैं कि दिस इज द थर्मामीटर जो आपकी मुमुक्षुता को नाप सकता है। तो द फोर्थ पैरामीटर ही सेड वाज प्राणी दया, कषायों की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भव खेद, प्राणी दया, तह आत्मार्थ निवास, आत्मार्थी मतलब आत्मा को प्राप्त करने का इच्छुक और आत्मा को प्राप्त करने का लायक, उसकी उपयोगिता रखने वाला, उसकी योग्यता रखने वाला ऐसा आत्मार्थी, उसके पास ये चार चीजें होनी चाहिए। कषायें उसकी उपशांत होनी चाहिए, उपशांतता को प्राप्त होना चाहिए कषायों को, मोक्ष की उसे इच्छा अभिलाषा होनी चाहिए, भव में उसे दुख दिखना चाहिए, और उसके हृदय में प्राणियों की दया होनी चाहिए। ठीक है, प्राणियों की दया बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जिसके मन में प्राणियों की दया नहीं होती उसकी कषायों को शांत या उपशांत नहीं माना जाता, उसको तीव्र कषाय माना जाता है। ये सिंपल एम्पैथी है, आप दूसरे जीवों के दुख के प्रति कितने सजग हो। यदि आपने अपने आप को जीव तरीके देखा है, जीव माना है, तो आपको दूसरे जीवों के दुख के प्रति भी कुछ पता पड़ना चाहिए, राइट। जैसे किसी ने, किसी के घर में चोरी हुई हो, ठीक है, और वो उसने बहुत पेन सहा हो, उसने बहुत बहुत देर से रिकवरी कर पाया हो, उसकी नेबरहुड में किसी दूसरे के घर में भी चोरी हो जाए या आग लग जाए, जो भी हुआ हो, राइट, तो ये उसके पास जाता है, वो क्या बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ टफ इट इज। अरे तुम यही बोलते ना, आई कैन अंडरस्टैंड, तो आप भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्योंकि ये आपके साथ हुआ है, राइट। सिंपली तो यदि आप जीव हो और आपने दुख को सहा है, राइट, तो ऐसे जो दूसरा जीव दुख को सह रहा है तो आपको उसमें भी तो फीलिंग आनी चाहिए कि आई कैन अंडरस्टैंड। दूसरे जीवों के दुख पे हमको फीलिंग क्यों नहीं आ पाती कि यार ये जैसा दुख सह रहा है ऐसा तो मैं जानता हूँ, और ये अच्छी जाति का दुख नहीं है, ये कितना परेशान होता होगा, चलो मैं उसकी क्यों ना मदद करूं। तो ये जीव दया कहलाती है। जब आप स्वयं को जीव तरीके स्वीकारना स्वीकार कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो आपको जो दूसरे जीव दिख रहे हैं ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको उनके प्रति दया आना, उनके प्रति करुणा आना स्टार्ट हो जाता है। नहीं होता है देन देयर इज अ प्रॉब्लम. मतलब आप अपने स्वयं को दुखी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि दिस इज द बैरोमीटर, इससे नाप रहे हैं आप कितने अपने आप को जीव देखते हैं. ये डिपेंड करता है कि आप दूसरे जीवों के दुख के प्रति कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं, कितना एम्पथाइज कर पाते हैं. ठीक है? करेक्ट. मतलब लाइक यदि मतलब उसमें ये नहीं होता कि जो दूसरा दुखी जीव है वो जैन है कि नहीं है, वो मनुष्य है कि नहीं है, इज अ ह्यूमन बीइंग और नॉट, कोई भी है, यदि वो दुख में दिखता है, पीड़ा में दिखता है, देन देयर हैज टू बी, वहाँ होना चाहिए, हमारी करुणा वहाँ पर होनी चाहिए, जैसे बने तैसे हमको वहाँ मदद करनी ही चाहिए. जैसे जीवंदर कुमार है तो वो जा रहे हैं रास्ते से, तो रास्ते में वो क्या देखते हैं कि एक जगह यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ हो रहा था तो उसको पूरा हवन होता है, उस हवन में जहाँ पर हवन होता है वहाँ पर एक गलती से वहाँ पर खाने का सामान था, तो एक भूखा कुत्ता घुस गया, राइट, वेरी हंग्री, बहुत भूखा था, तो उसने देखा यहाँ बहुत सारा खाना है रखा हुआ, इतनी सारी चीजें, तो वो अंदर घुस गया. तो जो लोग यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, उन्होंने उस कुत्ते को देखा तो उनको बहुत गुस्सा, उन्होंने बहुत मारा उसको, हाउ कैन ही एंटर इन सच अ, यू नो, हमारे इतनी पवित्र जगह पर ये कैसे गंदा कुत्ता घुस गया.
हाँ.
इतना मारा कि ही वॉज ऑलमोस्ट डेड, बाहर आकर उसको मारकर बाहर छोड़ दिया. तो नाउ देवेंद्र कुमार वहां से निकल रहे हैं एंड वो उसको देखते हैं तो मतलब वो एकदम दहल जाते हैं कि ये जीवों के मन में दूसरे जीवों के प्रति इतनी क्रूरता कैसे आ सकती है, कोई कैसे ये जानकर के कोई मुझे मारे तो कितनी पीड़ा होती है, वो दूसरे जीवों को कैसे मार सकता है. तो ये देखकर वो एकदम आंदोलित हो जाते हैं, उनका हृदय एकदम घबरा जाता है इस क्रूरता को देखकर, और वो उनको समझता नहीं है कि मैं क्या करूं अब इसकी दया, इसकी इसकी सेवा करने के लिए मैं क्या करूं, कुछ उपाय नहीं दिखता कि इसकी मदद करे, तो मतलब ऑलमोस्ट ऑन इज डेथ बेड, क्या करेगा ये अभी. तो फिर जाकर उसको रमु कार्मिक सुनाते हैं, देखना यदि डॉक्टर हो या फिर कोई मुझे यत्न आता हो कि मैं उसको कर दूं, तो पहले ऐसे नहीं कि सीधे जाकर रमु कार्मिक सुनाने लगे, पहले तो वो इतनी पीड़ा में उसको कैसे मैं उसकी पट्टी करूं, मैं उसकी दवाई करूं, मैं क्या करूं. बट जब आखिरी में कुछ नहीं पूछता तो क्योंकि हम शरीर का उपचार नहीं कर सकते, तो चलो उसके परिणामों का तो हम उपचार करें, उसके उपयोग को क्या हम उस पीड़ा से हटा सकते हैं. देन वो उसके पास जाते हैं और उसको डमोकार मंत्र सुनाते हैं. अब ये मत देखिए कि क्या कुत्ते को डमोकार मंत्र थोड़ी आता होगा, ही वाज अ डॉग, क्या आता होगा डॉग से, क्या नहीं होता होगा. ये जीवंदर कुमार ने नहीं सीखा. जीवंदर कुमार मतलब तत्व मोक्षगामी जीव, ठीक है, मतलब सम्यक दृष्टि है, बहुत पुण्यशाली जीव है, बहुत. बट चित्त में दया कितनी है कि हम उसकी शरीर से मदद नहीं कर पा रहे, तो अब क्या करें, चलो अब तो मदद नहीं कर सकते, चलो छोड़े. तो नहीं, वो वहां पर जैसे बने तैसे इसका स्थितिकरण करने के लिए, संबोधन करने के लिए उसके पास बैठे और मरण पर्यंत उसको नमस्कार करके सुनाए. कोई सामान्य बात नहीं है
अनुभव जी,
राइट. हाँ हाँ
अनुभव जी, यहाँ मेरी
आवाज आ रही है आपको?
हाँ हाँ एकदम अच्छी आ रही है आपकी. मुझे यहाँ एक ही क्वेश्चन आपको पूछना है कि जब वो ऐसा है कि आई डोंट नो, आई शुड से इट और नॉट इवन, परंतु अगर वो जब अगर किसी आई विल से इट सम अदर वे, कि सपोजिंग कोई इंसेक्ट के मरी हुई है के तरफड़ती है माखिया वगैरह के किसी ने दवा डाली और फिर क्या है कि वो स्प्रे करने वाला बुलाया फिर माखिया यू नो तरफड़ती मरती है इतनी तो वो माखिया को भी हम तो यूजुअली स्टोरीज में तो पंचेंद्रिय को ना नमोकार मंत्र वगैरह बोलते हैं ऐसा सब स्टोरीज में सुना है तो ये जब इंसेक्ट्स के हैं तो उनको भी वैसा नमोकार मंत्र का जाप के करना चाहिए कि क्या कर सकते हैं।
देखिए आप यदि उनको सुनाएंगे तो उनको सुनने में नहीं आएगा क्योंकि उनकी पंच इंद्रिय नहीं है तो कर्ण इंद्रिय नहीं
बराबर हाँ
तो शब्दों से वो सुनते ही नहीं है उनके सुनने की शक्ति ही नहीं है
हाँ।
तो इसके लिए ही तो स्थावर और जो कि विकलेंद्रीय जीव है मतलब दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय और इवन असंगी पंच इंद्रिय इसलिए इन जीवों की रक्षा में विशेष तत्परता बोली जाती है क्योंकि यदि गलती से इन पर हमारा कुछ खास कर रखा गया तो फिर इनके उपचार का हमको यकीन भी नहीं पता। देखिए जो संगी पंचेंद्रीय जीव होगा ना यदि वो थोड़ी भी पीड़ा में होगा जैसे कि डॉग होता है कैट होती है राइट इनको कुछ थोड़ी पीड़ा भी होती है ना हॉर्स होता है ये आपको बता सकते हैं। उनके पास आर्ट है अपनी पीड़ा को व्यक्त करने की
बराबर हाँ।
व्यक्त कर सकते
हाँ।
जिनके आप पेट होते हैं उनको पता पड़ जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है इसको शायद अभी भूख लगी है इसको शायद अभी ये है राइट लेकिन जो असंगी चीज है मतलब पंचेंद्रिय तो फिर भी बता देते हैं दो इंद्रिय तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीव है इनके पास इनकी पीड़ा व्यक्त करने जैसा भी इतने ज्यादा एवेन्यूज नहीं होते हाँ एक इंद्रिय से वो भले हैं कि हमको दिख रहे हैं वो कि एटलीस्ट वो जी रहे हैं एक इंद्रिय में तो पता ही नहीं है कि वो जीव है कि नहीं है तो वो तो एक्सट्रीम एकदम जहाँ पर ज्ञान की अत्यंत मंदता है सिर्फ कर्मफल चेतना है वो वाली बात है लेकिन दो इंद्रिय तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीव इन जीवों के पास तो बहुत ज्यादा परेशानी है क्यों कि एक बार इनको डैमेज हो गई तो आप इनसे कुछ बात करके सॉरी नहीं बोल सकते कि सॉरी 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 क्योंकि इनके पास ख्याल नहीं है आप नमोकार मंत्र नहीं सुना सकते बिना सिर्फ कर्ण इंद्रिय तो इनके साथ तो ये सेंस हम इनको सुनाए लेकिन हाँ एक अच्छी प्रैक्टिस जरूर है कि जब हमसे कोई भी जीव हर्ट होता है तो हम स्वयं के प्रायश्चित के लिए नमोकार मंत्र करते हैं
बराबर वो तो बराबर
राइट कि ये मुझसे गलत हुआ है तो मुझको प्रायश्चित के लिए मैं भगवान का स्मरण करता हूँ राइट इनकी हिंसा हो जाए तो हम स्वयं के लिए तो पढ़ते हैं बट इनको सुनाना वो हम पाठशाला में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वहां पर कोई जीव हर्ट हो जाता है तो हम बच्चों को बोलते चलो उसको नमोकार मंत्र सुनाओ एक संस्कार डाल दीजिए कि ठीक है बच्चे छोटे छोटे बच्चे जब कोई और चला जाता है जीव मर जाते हैं तो उनको डेड बॉडी को भी वो सुनाने लग जाते हैं जस्ट एक संस्कार एक एटिकेट डालने के लिए
बराबर
राइट तो वो बच्चों को बताते हैं क्योंकि उनको क्या बताएं अभी लेकिन यदि हम उनकी शक्ति की अपेक्षा जाए तो उनमें सुनने की सामर्थ्य नहीं है तो उनके परिणामों में भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि अब क्या करें ऐसे तो फिर जैसे कि एक मच्छर भगवान की प्रतिमा के सामने जा रहा है गर्भगृह में एक मच्छर आ गया तो फिर उसके बहुत भाग्य बहुत पुण्यशाली मच्छर होगा वो कि देखो भगवान के गर्भगृह में आ गया है भगवान की प्रतिमा के ऊपर बैठ गया एक मच्छर कितना पुण्यशाली होगा वो अरे जब उसके है ही नहीं वो इंद्रिय वो शक्ति ही नहीं है उसको समझने की कि वो कहाँ पर है राइट तो फिर वो वाली बातें बनती नहीं कोई चींटी ऊपर प्रतिमा पर चल रही तो ऐसा थोड़ी कि उसने भगवान का स्पर्श कर लिया उसको पता ही नहीं है कि उसकी आंख ही नहीं है देखने के लिए भगवान का रूप देखने के लिए तो क्या मतलब है फिर उसका राइट लेकिन फिर भी परिणामों में इतनी कोमलता ही होनी ही चाहिए इतनी कोमलता अवश्य होनी चाहिए परिणामों में, कि कोई जीव यदि हमसे गलती से भी उसका त्राण हुआ है, उसको पीड़ा पहुंची है, तो हम वहां पर उसका खेद को व्यक्त करें कि क्या हो गया उससे,
परंतु इतने वो तरफड़ते डाइंग, मगर तरफड़ती इतनी माफिया इतना वो देखकर भी
कार वगैरह चलते हैं हाईवे पर, कार चलते हैं तो कोई ना कोई डॉग, या इंडिया में तो डॉग बहुत रहते हैं, वहाँ पर शायद डियर होते हैं यूएस में, रोड हाईवे पर डियर होते हैं, वो देखते नहीं बनते, चाहे वो एक पैर बस उसके ऊपर से ट्रक निकल जाए और वो उसी रोड पर स्टक, और वो इतना गंदी आवाज में वो फिर चिल्लाता है इतनी पीड़ा में। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि रुकते हैं उसको लेते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत क्रूअल और बहुत बुरी स्थिति है, मतलब सर्विस इंजीनियर ऐसी एक्सप्रेस कर पाता है, और दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री के प्रति तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है।
हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि भाव इंद्रिय तो भाव प्राण तो उनके है ही ना, तो उनसे भाव जो इंद्रिया है वो उसके पीछे तो भाव इंद्रिय जो आत्मा का प्रदेश है वही काम करता है ना, तो वो तो उनको है ही ना,
वो है वरिता ठीक है, लेकिन भावेंद्रिय को भी जानने के लिए मनुष्य में द्रव्य इंद्रिय चाहिए, तो उनको शब्द संबंधी ज्ञान की भावेंद्रिय नहीं है, उनको स्पर्श संबंधी है, आप छुएंगे तो उनको समझ में आएगा, आप कुछ भोजन के लिए देंगे उनको समझ में आएगा, यदि तीन इंद्रिय होगा तो उसको आप कुछ गंध देंगे तो वो भी समझ में आएगी, लेकिन शब्द उसको जानने की शक्ति नहीं है,
मगर जो वाइब्रेशंस आएंगे वो तो वो फील कर पाए होंगे ना, जब आप बोलते हैं नौकार तो उसके जो वाइब्रेशंस निकलते हैं ध्वनि, तो उसकी तो कुछ कुछ अच्छी इफेक्ट होगी कि नहीं होती है,
उसमें तो उस चीज के तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों की इतना क्षयोक्षम नहीं है, उनके कर्म फल चेतना बोली जाती है मेनली, एक इंद्रिय जीव और असंगी जीवों को भी मेनली कर्म चेतना भी बोली जाती है, कर्म फल चेतना,
कर्म फल चेतना नहीं होती,
ज्ञान चेतना नहीं होती, और कर्म चेतना भी इतनी डेवलप नहीं होती जितनी संगीत इंद्रिय जीवों की होती है,
बराबर,
वो जो काम करते हैं वो कर्म के द्वारा प्रेरित ही करते हैं, जैसा उदय आता है वैसा काम करते हैं ना, विचार नहीं कर पाते, उनके अंतरंग परिणामों का मतलब दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री के परिणामों का इतना मतलब ना, तो अपने पुराणों में कहीं वर्णन मिलता है कि उसको ऐसा किया तो इन जीवों के ऐसा हो गया, राइट, इनका बाहर के परिवेश से नहीं बनता वर्णन, मतलब इतना उनको उधर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ हमारी यदि पॉजिटिविटी रहती है जैसे हम प्रायश्चित करते हैं तो हमारे परिणामों का जरूर वहां पर हमारे लिए, क्योंकि हमारा कषाय परिणाम था, हमारा प्रमाद का परिणाम था जिससे उसकी हिंसा हुई है, तो हाँ वो उस प्रायश्चित से और उस नमोकार मंत्र जब हमने अपने परिणामों की शुद्धि के लिए बोला तो उससे वो हिंसा के परिणामों को जरूर हम ठीक कर पाते हैं प्रायश्चित से, वो तो जो हुआ उसके कर्मोदय में हो गया, उसका हमारे पास मतलब कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ, इट इज इररिवर्सिबल, आप संगी पंचम जी के प्रति जो कर रहे हो आप शायद उसका उपचार कर पाए सामने, रिवर्सिबल है, लेकिन असंगी यानी दो इंद्री तीन इंद्री जीव मतलब ठीक है एक डॉग को आप पे थोड़ी सी लग गई तो ठीक है कितनी लगेगी, लेकिन चींटी को थोड़ा सा भी लग गया तो शायद वो मर सकती है उसके थोड़े से, उसके लिए थोड़ा सा बहुत है।
मगर जैसे भानु बहन ने कहा ना, तो मैं भी जब कोई जीव घर में कोई भी मरी हुई मक्खी और कोई भी जीव जंतु हो तो मैं उठाकर फिर उसको तीन नौकार सुनाकर वो डेड बॉडी है फिर बाहर रखती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमको अच्छा लगता है कि भाई ये हमने तो कुछ किया नहीं, वो पड़ी थी वहाँ।
वो आपका प्रायश्चित, वो आपकी भावना है कि ठीक है कुछ हुआ, मगर लेकिन इससे इस बॉडी का कुछ अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि जीव तो इस समय नहीं।
हाँ, हमको अच्छा लगता है।
हाँ, हाँ। अनुभव जी बोलो।
अनुभव जी आपने बोला कि उसमें ज्ञान चेतना नहीं है, लेकिन वो तो जीव है ना, तो जीव है तो फिर ज्ञान तो है ना उसमें, क्षयोक्षम कम है लेकिन ज्ञान तो है।
ज्ञान से नहीं, प्रकार की चेतना होती है, ये तीनों चेतना ज्ञान चैतन्य के परिणाम, चैतन्य है, चैतन्यता का जो काम है, ये तीन जाति से किया जाता है, एक कर्म संचेतना, एक ज्ञान चेतना और एक कर्म चेतना, ठीक है। एक ही चैतन्यता है, चैतन्यता तीन फंक्शन कर सकती है, मतलब जैसे कि आत्मा एक है लेकिन उसकी तीन अवस्थाएं पाई जाती है, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ऐसी चैतन्यता एक है, उसकी तीन अवस्थाएं हो सकती है। तो हम देखें कि पेड़ है एक, ओके, ठीक है। अब बहुत तेज आंधी चल रही है, वो पेड़ क्या करेगा, थोड़ा कहीं पीछे सक सकता है, वो कहाँ पर जा सकता है, वो पेड़ आंधी चल रही है तो कहीं दूर चला जाए हटके वहां से, कुछ
कहाँ नहीं।
तो पेड़ को क्या करना पड़ेगा, जो भी उसकी कर्म का उदय आया है, कर्म का फल उसको मिला है, उसकी चैतन्यता पूरी उसी कर्म के फल को भोगने में लगेगी, वो अपना ध्यान वहां से हटाकर या अपने आप को वहां से बचाकर नहीं जा सकता।
कर्म फल चेतना वो
इसको बोलते हैं, कर्म मतलब आपकी पूरी चेतना कर्म के उदय में जो फल मिला है उस पर उसको भोगने के लिए ही पराधीन है, आप उससे बाहर का कुछ नहीं सोच पाते।
बराबर,
ठीक है। तो एक ही इसके पास एक कंडीशन है कि वो वहां से कुछ नहीं, उसको जो कर्म का उदय मिला है उसको वो भोगना होता है, वो बच के चला जाए कहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके, लेकिन अब दो इंद्रिय के जीव होते हैं, तो जैसे कि आपने गौच, पता है आपको गौच, वो जो बॉडी में चिपक जाती है फिर ब्लड को सोख करती है,
लीच,
लीच होता है, लीच, लीच, हाँ,
लीच,
जो लीच होता है, हाँ, तो वो दो इंद्रिय जीव होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसको सूरज, सूरज की रोशनी से बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। तो कई बार बारिश होती है तो बारिश में, बारिश के कारण लीच पैदा हो जाते हैं, ठीक है। वो इवन टेक बर्थ, यू नो, आपकी टेरेस पर हो जाते होंगे कई बार, आई डोंट नो वहां पर होते नहीं या इंडिया में हो जाते हैं, जब बहुत बारिश होती है तो यू नो दे टेक बर्थ, ठीक है। तो कभी क्या होता है, बहुत तेज बारिश हुई, लीच टेरेस पर हो गए पैदा, और उसी बारिश के बाद सूरज निकल के आ गया, ठीक है, बहुत तेज सूरज की धूप हो गई। तो अब क्या होता है, सूरज की धूप में वो जलने लगते हैं, लिटरली
मर जाते हैं,
पानी से बने होते हैं, पानी से बने होते हैं, तो वो जल्दी से सूरज में एकदम, यू नो, विद इन मिनट्स उनका पूरी बॉडी उड़ने लगती है, इट इवेपोरेट काइंड ऑफ, वो सिकुड़ने लगते हैं। तो अब देखिएगा, इट्स लाइक अ बर्निंग, जैसे उनमें आग लगी, बिल्कुल वैसे उनको फील होता है, बहुत पीड़ा होती है, इसलिए जब भी वो बॉडी में चिपक जाते तो हम उनके ऊपर बोलते हैं कि आप नमक डाल दीजिए उसके ऊपर, राइट। आपको पता है बॉडी में भी वो चिपक जाए या तो नमक डाल दीजिए, नहीं तो वो खून को पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, और इतना पी लेते हैं कई बार कि बहुत ज्यादा खून कम हो जाता है बॉडी में, राइट। आपको पता है ना, राइट, मीट के बारे में
ज्यादा, वो आई थिंक वो जो वो गाय और भैंस के ऊपर बैठती है वो ही ना।
नहीं नहीं नहीं
हाँ 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 वो ही पूरा सा खून पीते रहते तो उसके भी आपकी ह्यूमन बॉडी में लग जाता तो बोलते उसकी तरह आप नमक डाल दीजिए, नमक डालते तो वापस उसकी बॉडी जल जाती है क्योंकि नमक इज अगेन सॉल्टी राइट, ये बहुत हीटिंग बॉडी होती है उसकी।
હાથી પગ કેવું થાય ને ત્યારે એ ચોટાડે એટલે બધું ખરાબ લોહી ચૂસી લે।
તો અબ જૈસે વો પેરેસ્ટલ હો ગઈ લીચ વહાં પર ઠીક હૈ ઓર તુરંત ધૂપ નિકલ આઈ તો અબ દેખિયે લીચ દો ઇન્દ્રિય ચીજ હૈ ઠીક હૈ તો ઉસકો થોડી ઉસકી જો ચૈતન્યતા હૈ વો વિકસિત હુઈ હૈ ઇટ હેઝ ડેવલપ એક ઇન્દ્રિય જૈસી જડ મેં હૈ ઉસકી ચૈતન્યતા ઇટ હેઝ ડેવલપ્ડ અ બિટ અ લિટલ બિટ ઠીક હૈ અબ વો ક્યા કરેગા ઉસકો પતા હૈ કે ઉસકો પીડા હો રહી હૈ ઠીક હૈ क्योंकि ऊपर सूरज है, सूरज को तो वह हटा नहीं सकती, तो वो क्या करेगी पूरे छत से एक कोने से दूसरे कोने पर जाने का प्रयत्न करेगी, वो चलती रहेगी कि कैसे भी करके मैं धूप से बचे ठीक है, और वो पूरी जलती जाएगी तो वो थोड़ा भी नहीं चल पाएगी लेकिन बीच में जल के राख हो जाती है वो ठीक है। बस जब तक वो जीती है तब तक वो चलकर क्रॉस करना चाहती है पूरी तरह से कि वो छाया में पहुंच जाए। तो इसका सूरज से जलना ये तो कर्म फल है, वो जल रही है बट एट द सेम टाइम उस जलने से बचने का प्रयत्न करना ये कर्म चेतना कहलाती है। वो कुछ कर रही है उस कर्म के उदय से बचने के लिए। बात आई समझ में? आपको भूख लगी ये कर्म फल है लेकिन भूख लगने पर आपने खाना बनाने का और खाने का प्रयत्न किया ये कर्म चेतना है। तीनों काम ज्ञान के ही चल रहे हैं ठीक है, ज्ञान के। एक तो जब ज्ञान विकसित नहीं है, एक इंद्रिय जैसा है तो जैसा हो गया वैसा आपने कर लिया ठीक है, आपने उसमें कुछ नहीं किया ठीक है, हम तो क्या है वी आर स्लेव, कर्म ने अब हमें स्लेव बना रखा है, जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। बट जैसे ही आप दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पंच इंद्रिय तक आए तो आपको पता पड़ा कि हाँ ठीक है कर्म का उदय आता है फल होता है लेकिन हम उस फल में दूर होने को कुछ प्रयत्न कर सकते हैं भले वो आकुलता भरा हो। तो अज्ञान दशा में हम उल्टे प्रयत्न जो करते हैं उसको कर्म चेतना कहते हैं। बस किसी अहोभाग्य से आपको किसी ज्ञानी गुरु का संयोग मिला और आपको पता पड़ा कि मैं जो जितने भी प्रयास करता था दुखी दुखी होने के ये सब तो झूठे थे, बाहर कर्म के उदय में तो मेरा कुछ प्रयत्न चलता नहीं, मेरे में और उसमें तो अत्यंत अभाव है, कर्द्रव्य में कर्म की सारी कहानी झूठी है। तो जब ये पता पड़ा पता पड़े कि अरे ज्ञान में तो सिर्फ जाना ना मैंने ठीक है, ये जो कुछ कर्म का उदय भी आ रहा है ये मुझे कहाँ का छूट आता है, मेरे ज्ञान में तो सिर्फ मैं जानता हूँ मैं कर्म को करने वाला नहीं और कर्म के फल को भोगने वाला नहीं। तो ऐसा जब ज्ञान और कर्म उदय का भेद ज्ञान शुरू होता है जितना राग रहता है उतना तो कर्म उदय में हम उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन प्रति समय भेद ज्ञान की धारा चलती है तो आकुलित नहीं होते, ये ज्ञान धारा कहलाती है, ज्ञान चेतना कहलाती है, ये ज्ञानियों के जरिए है
क्योंकि हम हित और अहित को जानते हैं ना।
हाँ एक हित को जानते हैं और मुझे नहीं हो रहा ये बाहर जितनी भी आग लगी है ये मुझमें नहीं लगी, मैं तो दर्पण हूँ जिसमें वो आपका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मैं ज्ञान हूँ। ज्ञान को कोई कर्म का उदय छूता है इतनी ताकत नहीं।
बराबर।
तो फिर दुखी होने का जैसे कि इस कहानी आती है ना क्या हुआ, एक ऊपर बंदर बैठा हुआ था उसकी छाया नीचे पड़ रही थी, दूर से शेर ने देखा, शेर ने सोचा मैं इतने बड़े पेड़ पे तो नहीं जा सकता, मैं बंदर को कैसे पकड़ू, मुझे किसका शिकार करना है। बस शेर को पता था कि ये बंदर मूर्ख है, बहुत ही देर उसने अच्छी से दहाड़ लगाई थी बंदर ने उसको देखा और शेर ने अच्छी से दहाड़ ला के कोशिश की उसकी छाया पर, और शेर ने अच्छी तरह दहा लगा के उसकी छाया पर छलांग लगा दी। तो बंदर एकदम घबरा गया कि मैं मरा और वो डर के मारे खुद ही डाली से नीचे गिर गया। क्या पूछा उसने कि मेरी छाया पर उसने अटैक किया है, मतलब मैं मरा, राइट। तो जैसे वो बंदर मूर्ख है कि उसको उसकी छाया पर भी अटैक होने पर लगा कि मुझ पर अटैक किया है, ऐसे ही अज्ञान दशा में जीव पागल होता है। उसके ज्ञान में कर्म का चित्र बनता है तो उसको लगता है कि मेरे कर्म का उदय है, पर वो तो कर्म के उदय की छाया उसके ज्ञान में पड़ रही है, जिसको थोड़ी कर्म का उदय छू पाता है कभी। तो ये जब जीव को ज्ञान हो जाता है रहस्य का, तो उसकी ज्ञान चिखना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए जो भावेंद्री उसकी है या फिर ये सारे जीव है, इनको ज्ञान जैसा वाला विकसित नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। दो इंद्री तीन इंद्री जीवों के ज्ञान बहुत अल्प विकसित है, और इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बन जाती है जब हम इन जीवों के प्रति अपने जितने भी दिन भर के काम करते हैं इन जीवों के आसपास करते हैं सब बहुत, क्योंकि इसलिए पता है बहुत सुंदर जिम्मेदारी में तो कितनी गजब की बातें आती है। ये क्या बोलते हैं कि देखो ये भगवान आप वीतरागी है, बराबर भगवान कैसे वीतरागी है, आपको किसी जीव से क्या लेना देना उससे कुछ मतलब कोई मतलब नहीं ना। भगवान के आपके सामने उनके कोई जीव मर भी रहा होगा तो भगवान को नहीं कहेंगे ना वीतरागी हो गए,
बराबर बराबर।
तो लेकिन जिनागन में क्या बात आती है कि भगवान तीनों लोगों के जीवों पर उपकार करते हैं, नहीं करते ऐसे नहीं बोलते, भगवान तीन लोग के जीवों का उपकार करते हैं। तो जिनागन में जिनागन में एक जगह आता है इधर, तो क्या बोलते हैं ये भगवान आप कुछ नहीं करते, राइट, आप वीतरागी हैं, लेकिन एकमात्र आप में ही ताकत ऐसी है कि आपके द्वारा तीन लोग के जीवों का उपकार हुआ। भगवान तीन लोग के जीवों का कैसे उपकार करते हैं? हेलो,
हाँ जी,
हेलो,
तो उपकार करते हैं
कैसे करते हैं? भगवान के तो कुछ है ही नहीं वीतरागता है, तो कुछ उनके राग द्वेष है ही नहीं। क्या ये भगवान जिसके हृदय में आपके द्वारा उपदेशित
वाणी
तत्व ज्ञान है, वह ना चाहते हुए मतलब वह उसके जीवन में ही एक इंद्रिय जीव तक का उपकार हो जाता है, इस तक की दया हो जाती है। फिर कितना किया उसने?
पाचो आवाज हो गया पहला सरस आवतो तो
पाचो आवाज हो गया।
हेलो, हाँ, जिसने जिनदेव की वाणी को सुना है, देखिए जिनदेव ने कुछ नहीं किया, बट ये कहते हैं ना भगवान तीन लोग के जीव का उपकार करते हैं, कैसे करते हैं? संगी पेंशन जी का तो वो करते हैं, उन्होंने उनको दिग्विजय ने सुना दी, ये सब सुना दिया, बट एक इंद्रिय जीव का कैसे उपकार करते हैं कि संगी पेंशन जी जीवों ने भगवान की वाणी सुनी है, उनके द्वारा उन जीवों को अभेदान मिलता है, उनकी रक्षा होती है,
बराबर
मतलब उनका भी कितना उपकार भगवान की वाणी में प्रत्यक्ष है। राग बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी वाणी का कैसा चमत्कार है कि उनकी वाणी को सुनने वाले जीवों से सारे जगत को अभेदान मिला हुआ है, सारे जगत की रक्षा हुई है, सारे जीव वहाँ जगत के जीव दया को पालते हैं, बराबर। हेलो,
बराबर।
तो ये वाली बातें बहुत, तो इसलिए ये भगवान आपके अनंत दया की, आपकी अनंत अभय की महिमा को हम क्या कहें, ऐसे करके बहुत सुंदर सुंदर भगवान की अलग अलग तरीके से स्तुति जिम्मेवारी में आती है। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा प्राणी संयम पर बात करी थी, क्योंकि हम जो शम दम पर है वहां से संवर और इसी से निर्जरा शुरू होगा। जब प्राणी संयम पर हम जाएंगे तो इंद्रिय संयम आएगा और इंद्रिय संयम में समिति गुप्तियां ये सब चालू हो जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप में से किसी को? नहीं उससे विचार
करिएगा। जो समय सार की गाथा तो उसमें तो आता है ना कि कोई किसी को बचा नहीं सकता है, जो बचाने की भावना करते हैं वो रियली
बराबर। तो इसका समाधान मैं इसी क्लास में दूं या अगली क्लास में दूं?
अगले क्लास में देना, बेस्ट ओके। वैसे तो पता है मगर फिर भी आपके मुंह से सुनना है ताकि क्लेरिटी ज्यादा हो जाए।
क्योंकि अभी सवाल जल्दी हो गए तो आप लोग का टाइम एक्सीड हो जाएगा। बट क्वेश्चन बहुत सुंदर है। क्वेश्चन ये है कि प्राणी मतलब हिंसा उसको मारने से नहीं होती है, हिंसा हमारे अध्यवसान से होती है। प्राणी तो अपने आयु कर्म से जीता है, तो उसको और इस जीव दया को कैसे लिंक करना, तो हम नेक्स्ट क्लास क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसके सोल्यूशन में क्योंकि यार नए विवक्षा का बहुत फर्क है। ठीक है, बट बहुत सुंदर क्वेश्चन है और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार द्रव्यनियोग हमसे जो कहता है हमें भी उसको गलत समझ लेते हैं तो वो हमारे मुमुक्षुता के लिए, जिसको पंडित टोडरमल जी की भाषा में स्वच्छंदता बोलते हैं, वो फिर हमको निष्ठुर बना देता है। तो ये वाला क्वेश्चन एक फ्लैगशिप क्वेश्चन होना चाहिए हमारा कि यदि ऐसा है कि एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य को आयु के बिना नहीं मार सकता या जिला नहीं सकता, जब रक्षा करने का भाव ही झूठ है तो फिर आप जीव दया की बातें कैसे करते हैं? तो हम इस पर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे।
थैंक यू।
ठीक है, अभी के लिए चल वाले स्थिति करते हैं।
थैंक यू अनुभव जी, जय जिनेन्द्र।
थैंक यू अनुभव जी, थैंक यू प्रीतिबेन।
अवाज बराबर हतो राइट आज?
એટલે અવાજ આમ લો એટલે આઈ હેડ ટુ પુટ માય સ્પીકર
ટુ અનધર કોલ પ્લીઝ પ્રેસ 1 ટુ હેંગ અપ પ્લીઝ પ્રેસ ધ સ્ટાર કી
90% સ્પીકર ઝોન હા ત્યારે આમ બરાબર
સરસ છે પ્લીઝ અનધર કોલ પ્લીઝ પ્રેસ 1
આમાં શું થાય કે અનુભવજી જો ટ્રાવેલમાં હોય ને તો કદાચ ઉદયપુર આવ્યા હોય, કારણ કે ઘણી વખત ભાભીને બીજા કામ માટે જવાનું હોય તો એ ત્યાં લેક્ચરર તરીકે આવે છે, તો એમના ઘરે પણ હોય તો એ લોકોના બધાના ઘર બહુ નાના, આપણે સવારે ફોન કરીએ છીએ હજુ ભાભી ને બધા સૂતા હોય તો એમને ઓલું સોફ્ટ બોલવું જ પડે.
ના ના, આ તો આજે એને ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ હતો એટલે એણે કીધું કે એટલે મોડા પણ જોઈન થયા ને કે ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ
હતો. પણ એટલે તોય જ્યાં હશે ભલે ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ હોય પણ આપણે એ કન્સિડરેશન કરવું જોઈએ કે મોર્નિંગ હોય ને એ ગમે ત્યાં હોય ઘણી વખત એનો તો આઈ મીન મને પણ આછું સંભળાતું હતું બાદ બરાબર છે કોન્સન્ટ્રેશન વધી ગયું પણ ધીસ કુડ બી એટલે આ તો મેં જોયેલું છે આંખે એટલે હું તમને જણાવું છું.
ચલો એનીવે
Thank you so much.
This was at least Prithiben Laiva at Lenitas, so we could not have had a class.
Correct, yeah.
Thank you, Prithiben.